त्रिलोक सा लेक्चर नंबर छह। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सवसाऊणं, बलगोविंदसिहामणि, किरणकलावरुणचरणं किरणं, विमलयरणेमि चन्दं, तिवणदन्दं नमं स्वामी। यह आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्र विरचित त्रिलोक सार नामक ग्रंथ है और उसके हम हिंदी टीका पढ़ रहे हैं। अभी आए हैं पृष्ठ संख्या 21 पर, 21। एक गाथा 17 का ही यहाँ पर विवेचन चल रहा है, उसके विशेषार्थ को हम पढ़ रहे हैं। एक क्षेत्र यानी वो व्यास से 6 गुना परिधि कैसी होती है उसको हमने 20 नंबर के पृष्ठ पर देखा था। अब यहाँ 21 नंबर पर हम देख रहे हैं। ये गोल कैसे किया 20 नंबर पर समझ में आया? हाँ, कुछ नहीं समझा। देखो ये गोल है, ये जो ऊपर फिगर बताइए ना, पहले 20 पेज पर पहले ये उन्होंने आधा किया, ये आंख 1 लाख है यानी आधा आधा लाख हो गया। अब उसके और आधे आधे के इस लेवल पर यानी 1/4, 1/4, 1/4 चार टुकड़े हो गए। अब ये ऊपर देखो परिधि की तरफ, ये जो है ना इतना मिला यहाँ पर। अब के इस पॉइंट पर जाना, इस पॉइंट पर जाके इसको सेंटर बनाओ, इसको सेंटर बनाएंगे ऐसा, तो यहाँ पर भी उसके ऐसे टुकड़े करो आधा, तो यहाँ से यहाँ तक ये एरिया मिल जाएगी, इसको आधा करने से ये एरिया मिल जाएगी इतनी। ऐसे छठे छठे भाग तक जाते हुए उसके एरिया निकालेंगे, यानी पहले इतना निकला, फिर ऐसे इतने 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 टुकड़े आगे गए और वहाँ ऐसे ऐसे फिगर करते गए, एकदम लास्ट फिगर देखो अभी, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात। लास्ट फिगर में है ना वो 6 त्रिकोण दिख रहे हैं आपको। अभी यहाँ से यहाँ तक परिधि का छठा भाग है, फिर वो छठा भाग है, फिर छठा भाग है, और उसकी डायमेंशन वो 1 ल/2 लिया यानी आधा लो, आधा लाख योजन।
आधा लाख नहीं होगा ये तो, इतना इतना आधा लाख नहीं होगा, पूरा हाफ में आधा लाख,
पूरा हाफ ही लिया यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक आधा लाख लिया। एक्चुअली वो गोलाकार थोड़ा ज्यादा होगा, परंतु उसकी बात नहीं कर रहे हम, स्थूल रूप से देख रहे। यहाँ हमने आधा लाख लिया तो ये परिधि भी आधा लाख काउंट की। फॉर एग्जाम्पल वो है थोड़ा गोलाकार, थोड़ी ज्यादा होगी, वो सूक्ष्म विवेचन में आएगी। जय जिनेन्द्र, अभी हम शुरू बोल रहे यहाँ पर 20 पेज पर है। देखो ये यहाँ तो आधा लाख है कि नहीं, ऊपर की 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 किया है 20 पेज पर। अब ये बीच के 2 1/4 कितने हो गए हैं?
आधा।
अब वो उसी को वो सर्कमफेरेंस पर ले लो, परिघ पर ले लो, यानी वो मान ले तो वो आधा लाख है। वहां से आगे चलो उसको भी आधा लाख मिलेगा, ऐसे आधा लाख आधा लाख आधा लाख कितनी बार मिलेगा। ये उन्होंने 6 कोण जो लिए ना, एक कोण से दूसरे कोण तक आधा लाख, वहां से देखो उन्होंने 6 टुकड़े कर दिए ना उसके, ऐसे परिघि के। देखो ये जो स्टार जो ऐसे बनाए हैं त्रिकोण, उसको देखना आप ऐसा, यहाँ से यहाँ आधा लाख, यहाँ से यहाँ आधा लाख, आधा लाख, आधा लाख, आधा लाख, आधा लाख, छह बार आधा लाख। कौन सा ऊपर का?
नहीं, आधा लाख इतना ही होगा।
हाँ ना, और वो कैसे उन्होंने बता दिया? ऊपर जो है ना सेकंड लाइन में, मध्य के दो खंड मिला देने पर मध्य के अर्ध क्षेत्र हो जाता है, वो आधा लाख है। वही ऊपर से नीचे तक समांतर है ना, समान है ना वो एरिया, ऊपर से नीचे तक वो आधा लाख समान है। देखो पहली पहली फिगर
20 नंबर के जो सेकंड नंबर राउंड है,
वो तो एक मिनट
सुनो सुनो, वो आधा लाख जो है ना,
हाँ,
वो ऐसे छह जगह घुमा दो ना,
ये 1/4 + 1/4 मिलकर आधा हुआ कि नहीं? अभी इसको ऊपर तक ले जाओ, तो ये परिघी को हमने मान लिया, ये भी आधा मान लो ना आप, इन्हें है यानी वो तो थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि कर्वेचर है, स्ट्रेट लाइन में आधा एग्जैक्ट होता, ये थोड़ा ज्यादा होगा, उसको यहाँ स्थूल दृष्टि से उसको काउंट नहीं किया, उसको हमने ये आधा लाख हुआ। अब ऐसे यहाँ से आगे के कोण तक आधा लाख, आधा लाख, आधा लाख, छह बार आधा लाख होता है तो 3 लाख हो जाता है। यही इस पूरे पेज पर बताया है। तो व्यास जो है 1 लाख, उसके तिगुनी परिधि होती है, ये बात वहां समझाई। यहाँ तक हम समझ गए। अब ये वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी गोलाकार कोई एरिया है, गोल, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना उसकी बात है। तो उसका क्या है क्षेत्र, देखो ये गोलाकार है, उसका क्षेत्रफल कैसा निकालते हैं हम? स्क्वायर होगा इसे पार्टी जैसा, तो दो भुजाओं को गुणा करते हैं तो हमको क्षेत्रफल मिलता है। अब इसमें क्या करना है, हमें सरकमफेरेंस मालूम हुआ है। अब सरकमफेरेंस मालूम हुआ है तो उसके द्वारा हम उसके जो व्यास है उसके 1/4 से उसको गुणा करेंगे, त्रिज्या के हाफ, हाँ त्रिज्या का हाफ, तो हमें उसके एरिया मिल जाएगी। अब उसके लिए वो उसको कैसे करना है उसको बता रहे हैं। देखो अब वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए व्यास के चतुर्थ भाग से गुणा क्यों किया जाता है उसकी वासना कहते हैं। कल वासना का अर्थ क्या देखा था हमने?
विश्वास।
वासना के दिन उसका रीजनिंग बताएंगे यहाँ पर। कर्ण की गोलक सदृश आकार का नाम शशकुली है। इस कर्ण की गोलक सदृश कुंड का व्यास 1 लाख योजन है। इन्हें गोल को ही उन्होंने शशकुली कहा। इसी 1 लाख व्यास वाले वृत्त को ऊर्ध्व, नीचे और मध्य में मध्य से छेद कर फैलाने पर एक लंबा त्रिकोणाकार क्षेत्र बन जाता है, यथा उन्होंने वो। हाँ क्या प्रश्न है? 21 पेज पर जो फिगर्स है उसको हम देख रहे हैं। अरविंद भाई, ये गोल को उन्होंने क्या किया, कैसे छेदा है? ऊर्ध्व, मध्य और अधो,
एक फैलाने पर,
ये उन्होंने ऐसा त्रिकोण बता दिया और ऊपर का उसके जो हाइट हो गई वो आधा लाख हो गई और ऐसे 3 लाख हो गई।
इतना ही अभी हाफ में लिया है उसे। हाफ से ही ऐसा लिया है मुझे लगता है।
ना ना ना, हाफ से लेते तो एरिया कम हो जाते हैं ना। नीचे का त्रिकोण की एरिया बताओ कैसे लिखी है उन्होंने, 3 लाख बताइए, है ना?
ये जो कर्वेचर है,
हाँ,
उसको सीधा किया,
ठीक है सीधा किया, परंतु सीधा किया तो वो तो
लंबा है ना उसको।
देखो 1 लाख यहाँ है, उसमें और 2 लाख कहाँ से मिला है, यानी ये पूरा 1 लाख और ये पूरा 1 लाख।
देखो ये जो ऐसा राउंड है ना उसको ऐसा किया, देखो क्या कह रहे, 3 बातें हैं ना, 1 लाख व्यास
नहीं, नीचे के जो ट्रायंगल की एरिया देखो ना, ये आधा लाख तो ऐसा ही लिखा, और ये 3 लाख हो गया, ये आधा लाख हुआ, मान लेते इसको ऐसा लिखेंगे, और ये 1,00,000 हुआ यहाँ पर, और 2,00,000 कहाँ से आए? ये यहाँ पर ले गए, अरविंद भी समझ में आ रही बात? देखो इन्होंने क्या लिखा है, फिर ये पढ़ेंगे।
1,00,000
व्यास वाला वो तो गोल है,
वृत्त यानी गोल ना,
वृत्त यानी गोल,
उसको ऊर्ध्व यानी ऊपर,
इसी हमको ये हम ट्रायंगल के ऊपर की लाइन पढ़ रहे, इसी 1,00,000 व्यास वाले वृत्त को यानी गोल को ऊर्ध्व नीचे और मध्य से छेद कर फैलाने पर, ना 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 3,00,000 बराबर है। देखो हम ऐसे इसको ऐसा फैलाएंगे, ऊर्ध्व गोलाकार, एक कागज दे दो मेरे को गोल, वहाँ कोई रफ कागज बीच में पड़े है, देखो इधर है, हाँ वो कागज है कि इधर, वो बीच में कागज सफेद वो नहीं, ये लेफ्ट में
क्या चाहिए,
ये जो बीच में, हाँ वो क्या है, हाँ हाँ वही चाहिए मेरे को, यानी हम इसको फैला कर देख सकते हैं ना कैसा फैला है उन्होंने गोल को, कैसे फैला है उसको थोड़ा इमेजिन करेंगे हम। पहले नहीं क्यों वो समझ में नहीं आ रही है ना बात, कैसे किया है उन्होंने,
अब क्या कर रहे हैं,
हाँ देखो ये गोल है,
गोल कागज काटा है,
गोल कागज काटा है, अभी उसका व्यास है 1,00,000 योजन, ऊपर से हाइट बीच तक आधा लाख, नीचे भी 0.5 लाख है ना, तो पहले उन्होंने क्या किया, ऊर्ध्व से काटा छेदा, मध्य से छेदा और फैलाया, यहां से भी छेदा, यानी ऊपर के 2 हाफ हमने अलग निकाले, हाफ के हाफ के, यहां तक बात ख्याल में आई ना, अब हमको ये 3,00,000 होना चाहिए यहाँ पर, 3,00,000 कैसे करेंगे इसको, हाँ सर्कल भरे उसको ट्रायंगल बना के हम जोड़ सकते हैं, 3,00,000 कैसे होगा वहाँ पर,
इसकी परिधि कितनी है, 1,00,000
ये 1,00,000 हुआ और 2,00,000 ये 2,00,000 कहाँ से, ये तो 1,00,000 हुआ, यहाँ 3,00,000 लिखे है नीचे उन्होंने,
मैं क्या पूछ रहा हूँ,
हाँ
वो जो उसका सरकमफेरेंस जो है,
सरकमफेरेंस है
कितना है, पूरा पूरे 1,00,000 योजन का
सर्कल बॉटम में,
सर्कल ऐसा रखेंगे
ना, ना उसको दाबने का है ना,
सर्कल बॉटम में क्या,
यानी ये 3,00,000 हो जाएगा, अच्छा ये 3,00,000 हुआ, ये 3,00,000 क्योंकि सरकमफेरेंस का आधा हुआ, अपन तो पूरा सरकमफेरेंस 3,00,000 है, पूरा सरकमफेरेंस 3,00,000 है, ये 4 टुकड़े है परंतु यानी ये ऐसा किया, हाँ। तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ना, फिर वो उसने ऐसा ट्रायंगल बताया ऊपर से, जम नहीं रहा है, ये उन्होंने 3,50,000 ये हुआ और 1,50,000 ये हुआ, मान लेते हैं इस तरह से, यानी ऐसा वो 3,00,000 हो जाएगा, सरकमफेरेंस हमने स्प्रेड किया, ये उनको कहना है सरकमफेरेंस स्प्रेड कर दिया, परंतु फिर भी वो कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन तो होता नहीं, फिर आगे क्या कहना चाहते देखेंगे, हाँ? दबाया वो ऊपर से दबाए तो देखो, 1 लाख व्यास वाले वृत्त को ऊर्ध्व, नीचे और मध्य से छेद कर फैलाने पर, ऊर्ध्व नीचे यानी उसके चार ही टुकड़े कर दिए ना उन्होंने, तो इसके चार टुकड़े कर दिए। ऊर्ध्व नीचे और मध्य से फैला कर ऐसा किया उन्होंने।
मैं क्या पूछ रहा हूँ?
हाँ बोलो बोलो बोलो।
सोच रहा हूँ,
हाँ,
ये जो 1 लाख लोग योजना में व्यास है, उसकी परिधि कितनी है?
पूरे 3 मिलकर 3 लाख है, पूरी परिधि 3 लाख है।
तो 3 लाख को उन्होंने क्या दिया? ऊपर आधा रखा।
पूरी परिधि ऐसा अगर स्प्रेड करेंगे तो ही 3 लाख हो जाती है ना, परंतु ये पर अभी इसका ट्रायंगल कैसा करेंगे, इसका ट्रायंगल कैसे करेंगे? ये हमने 4 ऐसे अलग अलग रखे यहाँ पर, ये ऐसे हमने रखे तो यहाँ पर नीचे तो 3 लाख हो गया, ये एरिया हमने सर्कमफेरेंस फैला दिया। अब
हाइट
आधा लाख रह गई है, परंतु इसमें फिर एवरेज रूप से निकालना पड़ेगा, ये ट्रायंगल बन गया ऐसा सोचेंगे हम, वैसे तो 4 ट्रायंगल बन गए है ना, है ना,
वही 3 लाख पूरा होगा ना,
वही ऐसा 3 लाख हुआ और हाइट सब जगह उसके आधा लाख हो गए, इस तरह से हम देख सकते हैं उसको। 4 त्रिकोण हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, उसमें सबकी जो नीचे के बेस है वो 3 लाख हो गई और हाइट आधा लाख हो गए, अब आगे बढ़ेंगे ऐसा ही और ऐसा ही आधा लाख। अब कहते हैं जिस मध्य का प्रमाण, सॉरी त्रिकोण यह था, इसी आयत त्रिकोण क्षेत्र को मुख से भूमि तक आधा करने पर मध्य फल प्राप्त होता है, मध्य फल यानी एवरेज मिलता है। और आयत त्रिकोण बताया, यानी वो त्रिकोण समझ, दोनों बाजू समान है ऐसा त्रिकोण बताया। जिस मध्य फल का प्रमाण 1/4 लाख योजन है, 1/4 लाख योजन है, यानी ये बाजू में ये जो उन्होंने बताया ना फिगर, नीचे 3 लाख लिखा, उसका आधा कर दिया, आधे की हाइट कितनी रहेगी? 1/4 लाख, यही इसी की फिगर देखना, और बीच के और ब के बीच में जो लाइन है ना, वो भी खड़ी लाइन, वो 1/4 लाख हो गई ना, आधे की आधी हो गई,
ये लाइन
हाँ
1/4
लिखा है ना,
आधा लिखा है,
आधा किधर है? आधा का आधा है, वो 1/4 है, वो आधा लिखा होगा तो 1/4 करना हम,
नहीं आप जो कह रही 1/4 चाहिए ये बात बराबर है, और वहाँ 1/2 जो लिखा है वो भी बराबर है, क्योंकि हमने
आधा लाख हो गया,
देखो ये ऊपर की फिगर देखना, 3 लाख ऐसा नीचे
और आधा
लाख,
हाँ
अब उस आधा के आधे की है ना,
आधे के आधे 1/4 हो जाता है,
हाँ तो वो तो आधे का आधा करने के लिए उसको 1/2 लाख लिखा, लेकिन है तो ये पूरा आधा लाख,
नहीं 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 वहाँ 1/4 हमारे में लिखा है, 1/4
आपने कितना लिखा है?
1/4 है, देखो यहाँ लिखा है मध्य फल, मध्य फल का प्रमाण 1/4,
हाँ
और ब के बीच में जो लिखा है ना, और इसी क्षेत्र को ऊर्ध्व से मध्य फल तक छेदने पर 2 खंड हो जाते हैं, और ब ये 2 खंड हो गए, इन दोनों खंडों का नाम क्रम से अ और ब है। अब इन दोनों खंडों को अधक खंड स के क्रम से घटते हुए दोनों पार्श्व भागों में स्थापित करने पर, अभी अ को निकालो वहां से उठाओ और बाजू में स्थापित करो, स के बाजू में, ब को वहां से उठाओ और यहाँ स के बाजू में, जो नीचे के फिगर में लिखा है ना वैसा करना, स्थापित करने पर आयत चतुरस्र क्षेत्र प्राप्त होता है, यानी वो आयत समझते हैं ना, लंबा लंबा ऐसा रेक्टेंगल
रेक्टेंगल,
ये लंबा चौड़ ऐसे रेक्टेंगल, जैसे लंबा रेक्टेंगल प्राप्त हुआ उसका। इस आयत चतुर्थ क्षेत्र का क्षेत्रफल व्यास के चतुर्थांश, क्योंकि 1/4 था ना वो हमने बाजू में रखा उसको, और नीचे 3 लाख है, तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4 लाख हो गया, यानी हमने गोल को आड़ा स्क्वायर बना दिया, इतनी बात। उसमें ये
देखो अभी ऊपर की फिगर देखना, अ और वो दोनों बनाए ना, तो अ को ऐसा निकालना और ये 1.5 लिखा उसको यहाँ लगा देना, तो नीचे लिखा लगा देखो, अ को उल्टा किया वैसे ही ब को भी उल्टा किया, तो ये बराबर स्क्वायर हो गया, ऐसा स्क्वायर इन द सेंस आयत, यानी ऐसा अ था ना उसको ऐसा करके खींचा दिया, ये अ के ऊपर की जो लाइन है तिरछी वो उल्टी करके 1.5 बाजू वाली बाजू है वो ऊपर लगाना और इधर वाली नीचे लगाना, तो सेम स्क्वायर होगा।
ये सारे ट्रायंगल ऐसे तोड़ तोड़ कर बीच में बिठाना है इसके, ये सबके आधे आधे करके, ये दो हमने ऐसा किया था ना फैलाया, तो उसके ऊपर के हाफ हाफ ट्रायंगल तोड़कर नीचे फिर कर दो, आयत ऐसा लंबा चौड़ा आयत हो जाएगा, घर में जाके करके बैठो कर। तो ये जो गोल है उसको लंबा चौड़ा ऐसा फैलाया, उसको आयत बना दिया, तो आयत बना दिया तो उसका हमने क्षेत्रफल तो निकाल सकते दो भुजाओं को गुणा करके, तो 3 लाख तो ऐसा था ही था, ऊपर ऊपर आधा लाख था, आधे लाख को भी आधा किया 1/4 रहा, वो 1/4 के ऊपर के दो ट्रायंगल निकाल के साइड में फिट कर दे तो पूरा रेक्टेंगल हो गया, और फिर उसके एरिया निकाले, वो सरकमफेरेंस निकाला। वो तो डायरेक्ट बताया था ना कैसे, वो उन्होंने उसका तो फॉर्मूला ही बताया था, पर ये करके बताया, करके बताया था, यानी उन्होंने डायरेक्ट फिगर ली थी, हाँ वो जो 20 पेज पर है ना, 20 पेज पर है, वो तो व्यास से तिगुना परिघ होता है वो बताया, उतना ही बताया, और यहाँ वृत्ताकार का क्षेत्रफल निकाला, हाँ तो वृत्ताकार गोलाकार था उसको दबा दबा के पूरा रेक्टेंगल बना दिया उन्होंने, अब उस रेक्टेंगल का उन्होंने एरिया बता दिया, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय हाफ 1/4 लाख,
3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4,
हाँ यानी वो 3 लाख परिघ ही है सरकमफेरेंस, और 1/4 ये व्यास का चौथा हिस्सा है, वही तो उन्होंने फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था उन्होंने, करके दिखाया, हाँ फॉर्मूला भी ख्याल में रखो, सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय हाफ डायमीटर या 1/4 त्रिज्या, वो तो हमने पहले ही देखा था कल, ये इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना। अभी आते हैं 22 पेज पर,
ये तो इसके इसका क्षेत्रफल 13/4 हो गया ना,
3 × 1/4 3 × 1 3 / 4 3/4 3 लाख गुना 1/4, वही तो कह रहे हैं ना आप, तीन चतुर्थांश, तीन एक तीन डिवाइडेड बाई फोर।
अच्छा अच्छा यहाँ लिखा है थ्री फोर्थ लाख,
वो तो साइड में कितना ऐड हुआ है वो लिखा है वहाँ, थ्री फोर्थ लाख यहाँ, थ्री फोर्थ लाख और ऊपर डेढ़ लाख तो था ही, दोनों मिलकर तीन लाख वहाँ पर भी हो गए, नीचे तीन लाख और हाइट वन फोर्थ लाख, दोनों को गुणा करने पर देखो यहाँ आना, यहाँ पर 22 पेज पर आना, गोल वस्तु के घनफल निकालने का नियम। अब यहाँ घनफल की बात है, वहां मैं मात्र क्षेत्रफल बता रहे थे, क्षेत्रफल निकालने के लिए परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुणा किया, उसी को वेध यानी हाइट से हम गुणा करेंगे या उच्छेद से तो घनफल मिलेगा, यही लिख रहे हैं यहाँ पर। परिधि में व्यास की चौथाई का गुणा कर उसी में वेध यानी गहराई का गुणा करने से खात फल अर्थात घनफल प्राप्त होता है। जैसे मान लो व्यास 2 इंच, इंच कैसा लिखा है,
मान लो लिखा ना,
क्या मान लो, च को न नहीं लगता
क्या,
ई में ऊपर डॉट,
ई में ई के ऊपर डॉट होना चाहिए, क्योंकि च के आगे अगर अनुस्वार निकालना है लगाना है तो तिर्यंच लिखते ना वैसा लिखना पड़ेगा। हाँ तो अच्छा किया वो चेंज कर दिया, किसी ने हमारे जैसे बताया होगा, हाँ आगे 3 इंच बराबर लिखा है,
3 इंच कैसा लिखा है, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, 2 इंच
मान लो व्यास 2 इंच, परिधि 6 इंच और गहराई 3 इंच। अतः व्यास को 3 गुना करेंगे तो परिधि आती ना, तो 6 इंच कर दी तो परिधि लिया, फिर व्यास 2 को चौथा भाग 2/4 मल्टीप्लाइड बाय गहराई 3 इंच मान ली हमने 3, तो वो कितना आ जाएगा, 9 घन इंच, वहां पर भी इंच बराबर करना है,
हमारे यहाँ बराबर,
हाँ घनफल हुआ। कुंड का क्षेत्रफल, अभी हमने जो 4 कुंड बनाए थे नाम याद है, बोलो बहुत अच्छा, तो कुंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ अनवस्था कुंड का व्यास जम्बूद्वीप प्रमाण अर्थात 1 लाख योजन का है, ये पहला अनवस्था कुंड है और उसकी परिधि 3 लाख योजन की है, अतः 3 लाख × 1/4 ये व्यास की चौथाई इज इक्वल टू 3 लाख × 1/4 यह कुंड का क्षेत्रफल हुआ, यानी उसको 3/4 लाख स्क्वायर हो जाएगा, ल स्क्वायर हो जाएगा ना, ल इंटू ल, नहीं तो 3 ल का चौथा भाग कर 3/4 ल लिखेंगे तो वो तो गलत बात हो जाएगी, ल स्क्वायर करना पड़ेगा घन,
केवल 3 ल,
हाँ हाँ उसको लगे ऐसे लिख के छोड़ दो बराबर है वो। अभी घनफल, हाँ वहाँ लिखना है तो 3/4 ल स्क्वायर हो जाएगा, घनफल 3 ल × 1/4 ल क्षेत्रफल में सुदर्शन मेरु की जड़ प्रमाण कुंड की गहराई 1000 योजन। अब यहाँ मेरु को क्यों लाया, तो मेरु पर्वत की भी गहराई कितनी, 1000 योजन है, तो अपने ख्याल में रहे इसलिए कहते जैसे मेरु पर्वत की गहराई अंदर जमीन के अंदर कितनी है उतनी इसके इस कुंड की गहराई है, 1000 योजन से गुणा करने पर घनफल प्राप्त होता है, अतः 3 ल × 1/4 ल × 1000 योजन यह कुंड का घनफल है। यह 1/10 ल भी कह सकते थे, 1000 है लाख का 10वां भाग है ना, तो ल घन हो जाता बराबर। शेष तीनों कुंडों का यही प्रमाण, यही क्षेत्रफल और यही घनफल है। आगे पढ़ेंगे 18 नंबर को भी,
इसका अगर हम उत्तर लाते हैं
ओ,
ये लाख है, 1/4 लाख
हाँ उसको ल में लिखना है ना, लाख में हजार, वो लाख का कितवा भाग है?
दसवा,
तो वो वन टेंथ ल लिख सकते थे, है ना? ये सारे योजन में ही है, 3 लाख योजन है, 1/4 लाख योजन है, 1000 योजन है, 1000 को बदले हमने 1/10 लाख कह दिया, एक ही बात है। देखो लिखो, आपको 3L × 1/4L × 1/10L, तो 3/40L³ L × L × L। हाँ सबको हमने, उन्होंने ऐसा ही गुणा चिन्ह रख के उन्होंने रखा है, हमने उसको गुणित कर लिया आपस में, L × L²
गुणित करूँ तो 3/40L आया ना,
ल घन।
आप पहले 2 ल है ना,
वो 3 बार ल लिखे ना अपन, 3L × 1/4L × 1/10L, ल को मत भूलो, नहीं तो 3 लाख का उतना 40वां भाग कर देगी आप। ल को घन कर दो, तीन हमने क्या लिखा, 3L × 1/4L × 1/10L = 3/40L³। अभी ल घन का अर्थ समझते हो? लाख में 5 जीरो है,
इसमें
15 जीरो हो गए, और फिर वो 3/4 उसका करना, 3/40 है। हाँ 3/40L³ ये उसका उत्तर होगा। अब आगे देखते हम, स्थूल क्षेत्रफल प्रमाण योजनस्य व्यवहार योजनादिकम कुर्वन आह। ये जो स्थूल क्षेत्रफल जो प्रमाण योजन है, क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमने जो पढ़ा वो प्रमाण योजन है। प्रमाण योजन क्या होता है? वो बड़े बड़े योजन होते हैं, और ये व्यवहार योजन सामान्य योजन होते हैं। योजन किसको कहते हैं मालूम है? एक योजन में कितने कोष होते हैं? 4 कोष का एक योजन होता है, ये ऑर्डिनरी अपना योजन, इससे 500 गुना प्रमाण योजन होता है। अब यहाँ अब ये बताएंगे, अभी यहाँ पर यहाँ यही बात लिखी है कि स्थूल क्षेत्रफल प्रमाण योजन से, हमने स्थूल क्षेत्र पर निकाला है क्योंकि हमने 3 गुना परिधि माना था, वैसे वो तो 10 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 22/7 से, उसको हम सूक्ष्म क्षेत्रफल कहेंगे। ये स्थूल की बात चल रही है। अब ये जो हिंदी में देखो, देखो 23 पेज पर पहली लाइन देखो, स्थूल क्षेत्रफल स्वरूप प्रमाण योजनों के, यानी हमने अभी जो निकाला वो प्रमाण योजनों में था, उसको प्रमाण योजन कहते हैं, व्यवहार योजनादि बनाने के लिए कहते हैं, यानी उसको हमको व्यवहार योजन में ट्रांसफर करना है, तो उसके बनाएंगे हम, वो देखेंगे। पहले पहले हम गाथा को पढ़ेंगे, फिर उसके गाथार्थ विशेषार्थ वगैरह को पढ़ेंगे।
हाँ। जो कुछ हमने ल ल ल देखा, 3/40L निकाला, ये प्रमाण योजन है।
ये सारे प्रमाण योजन है, क्योंकि जम्बू द्वीप प्रमाण बताए ना, लाख योजन, वो प्रमाण योजन में है, और हम जो 4 कोष आदि गिनते हो तो व्यवहार योजन है। यही कहना चाहते होगे ऐसा लगता है यहाँ पर। यहाँ सारी बातें बताएंगे, देखो, स्थूल फलम व्यवहारम जोयनम अविसरिसवम चकादौम चौरस्य सरिसवाते नवषोडश भाजिदावट्टम स्थूलफलम व्यवहारम यो जन्म सर्षपश्च कर्तव्य चतुरस्र सर्षपास्ते नवषोडश भाजिता वृत्तम। देखो गाथार्थ पहले पढ़ेंगे, उसका भावार्थ भी पढ़ेंगे, विशेषार्थ, फिर हम ये बात ख्याल में आ जाएगी। हमने ऊपर की लाइन पढ़ी थी, 23 पेज पर आना। अभी गाथार्थ पढ़ रहे, स्थूल क्षेत्रफल के व्यवहार योजन और व्यवहार योजन के सरसों बनाना चाहिए। ये क्यों बनाना है, इतना बता दिया ना लाख योजन, तो हमें कितने सरसों उसमें आती है उसका नाप निकालना है। इसके लिए हमें तो लाख योजन वो जो 30-40 अंश जो हमने लघन स्क्वायर वगैरह देखा, अब उसके हम पहले व्यवहार योजन बनाएंगे और व्यवहार योजन में से फिर सरसों तक आ जाएंगे, वो कैसे निकालना। तो योजन कोष से होते हैं, कोषों में धनुष होते हैं, धनुषों में हाथ होते हैं, हाथों में वीत होते हैं, वो सब बताएंगे। उल्टे क्रम से हम देखेंगे किसको क्या कहना हो। एक योजन इज इक्वल टू चार कोष, अब बाद में लिखना, हाँ 8 माइल।
तो अभी चार कोष,
हाँ, परंतु ये जो चार कोष कह रहे हैं ना वो व्यवहार योजन है।
वही मैं पूछ रहा था,
हाँ,
कि चार कोष मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू 2000 कोष व्यवहार योजन।
व्यवहार कोष हो जाएगी ना 2000।
व्यवहार योजन ही कहेंगे ना उसको।
देखो ये जो हमने अभी जो प्रमाण निकाला वो प्रमाण योजनों का है, तो उसके 500 व्यवहार योजन, व्यवहार योजन हो जाते हैं।
ये जो एक योजन है वो महायोजन है ना।
हाँ,
तो उस महायोजन को
इनटू 500,
एक कोष इनटू 500 ऐसा है ना, चार कोष इनटू 500।
अभी कोष की बात बीच में मत लाओ,
हमको
अभी पहले योजन बनाओ, फिर योजन के कोष बनाओ, फिर कोषों के धनुष बनाओ, फिर आगे चलो गाड़ी। अभी कोषों को मत लाओ बीच में, मैं ये कहती हूँ। हमने अभी कौन सी बात देखी, जो निकाला हमने उत्तर वो क्या है, प्रमाण योजन की बात है। अभी हमको उसको ऑर्डिनरी योजन में कन्वर्ट करना है। प्रमाण योजन 500 गुना बड़ा होता है, उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑर्डिनरी योजन कितने होंगे उसका डिवाइड नहीं, हम ऑर्डिनरी का अगर व्यवहार बनाना है तो डिवाइड, प्रमाण बनाना है तो डिवाइड करना है, वो बड़ा है,
प्रमाण
बड़ा है तो बड़े मान लेते हैं, ये संख्या भूल जाओ। 1,00,000 प्रमाण योजन के, प्रमाण योजन के ऑर्डिनरी योजन कितने बनेंगे, अरे डिवाइडेड बाय गुणा। देखो 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 अभी
प्रमाण बड़ा है तो फिर डिवाइड नहीं करेंगे।
एक डजन किसको कहते हैं, 12 आम का एक डजन आम हुआ, और आपके पास 3 डजन आम है, तो गुणा करेंगे कि भाग देंगे,
क्या निकलने के
लिए, एक डजन में 12 है तो 3 डजन में क्या है, डिवाइडेड बाय के मल्टीपल, हाँ, तो एक प्रमाण में 500 है, एक प्रमाण योजन में 500 व्यवहार योजन है, तो 1,00,000 में कितने हो गए,
ओके 1,00,000 में कितने हो, प्रमाण ना कितने हो गए,
नहीं प्रमाण कितने, प्रमाण का पता आपको है, एक प्रयो कंटेंस 500 व्यवहार यो, एक प्रमाण योजन में 500 व्यवहार योजन होते हैं, तो 3,00,000 प्रमाण योजनों में, 300 छोड़ो ना, 1,00,000 प्रमाण योजन में कितने व्यवहार होगी,
गुणा
करना, वही तो कह रहे हम,
प्रमाण से व्यवहार में लाने के लिए
वही तो करना है। एक प्रमाण योजन के 500 व्यवहार योजन होते हैं और हमारे पास व्यास उसका डायमीटर ही 1,00,000 योजन है, उसके ऑर्डिनरी योजन बनाने हैं, तो लाख योजन के बदले 500,00,000 हो जाए, 50 500 लाख हो जाएगी। और हमको ये जो हमने निकाला है ना 340 डिवाइडेड बाय लघन, तो केवल उसको 1500 से गुणा करके नहीं चलेगा,
1000 बार करना
है, 3 बार 500 लेनी पड़ेगी ना। देखो 3 ल इंटू 500 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 ल इंटू 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000 योजन है उसको भी मल्टीप्लाइड बाय 500 तो 500 का भी हमको घन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ख्याल में आई बात? हाँ देखो अभी उन्होंने तो अभी बताना है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो स्थूल क्षेत्रफल के व्यवहार योजन और व्यवहार योजन के सरसो बनाना चाहिए, यानी योजन से। देखो हमारे पास योजन का यूनिट है, जैसे आपके पास माइल का यूनिट है, किलोमीटर है, तो आपके इतने किलोमीटर है, उसको मीटरों में कन्वर्ट करो, मीटरों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटरों को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, ऐसा ये है। पहले प्रमाण योजनों से हम ऑर्डिनरी योजन बनाएंगे, फिर उसमें वो कोष धनुष जो है हमें सरसों तक आना है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट बनाना है सरसों का, तो कैसा है वो बताएंगे अभी। तथा चौकोर सरसों में 9/16 का भाग देकर गोल सरसों का प्रमाण निकालना चाहिए। ये जो चौकोर है कोई क्यूबिकल है, इसके एरिया से ये क्रिकेट के बॉल जैसा जो गोल होगा उसकी एरिया व्यास उतना ही रखना तो वो कम हो जाती है, तो उसको भाग देंगे 9/16 से। पहले हमें चौकोर सरसों का प्रमाण निकालेंगे फिर उसको भाग देंगे। अब यहाँ विशेषार्थ बता रहे हैं, तारतम्य बिना स्थूल रूप से निकाले हुए क्षेत्रफल को स्थूल क्षेत्रफल कहते हैं। तारतम्य बिना ने उसमें राउंड अबाउट स्थूल रूप से, जैसे मैंने व्यास से तिगुना परिक कहा, एग्जैक्ट तिगुना नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा है, वो ज्यादा वाले को यहाँ गौण करके स्थूल रूप से हमें आपको समझाने के लिए एक यहाँ स्थूल गणित बताते हैं और फिर सूक्ष्म अलग से बताएंगे, तो स्थूल क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ स्थूल क्षेत्रफल में 3 ल गुणा 1/4 ल गुणा 1000 प्रमाण योजन है, खाली योजन नहीं प्रमाण योजन है, इसका नाम ही प्रमाण योजन। एक प्रमाण योजन के 500 व्यवहार योजन होते हैं, तो 3 ल गुणा 1/4 ल गुणा 1000 प्रमाण योजनों के कितने व्यवहार योजन हो गए, इस प्रकार त्रैराशिक कर व्यवहार योजन निकालना। इसलिए उन्होंने वो 3 ल ये अलग अलग रखे, हर एक के लिए 500-500 से गुणा करना पड़ेगा। ये प्रमाण योजन अभी जो हमने निकाला है 3 ल वगैरह, वो प्रमाण योजन है। हाँ अभी उसके व्यवहार करने के लिए एक एक योजन को 500 से गुणा करना पड़ेगा। त्रैराशिक उसी को कहते हैं, हमने आप जो अभी जो बताया था। विशेष ज्ञातव्य, ये जो विशेष ज्ञातव्य है वो नीचे फुटनोट में लिखा है, त्रिलोक पन्नति भाग 1 गाथा 98 से 113 तक। ये जो आगे
98 है, अच्छा
मेरे में 98 लिखा आपने,
18
है क्या?
113 तक
में यही 18 लिखा है और 113 तक।
ये तो कितने
हो गए? ये लोग 5 लाख योजन
113
तक
आपको कहाँ मिल रहा
है? इसमें ही ना?
इसी में होगा ना,
गाथा देख रही
हूँ, तिलोए पन्नति की गाथा,
तिलोए पन्नति की बता रहे हैं, पर इसमें भी उपसंहार करते हैं, इसमें भी त्रिलोक पन्नति की गाथाओं के नंबर अलग हो गए। अट्ठानव लिखा है उसने।
क्या लिखना है अभी? एक गाथा
कुछ नहीं लिखो, वो तो
आपके पास 18 लिखा है ना नीचे पुत्रों में, उसको 98 करो, एक की जगह नौ।
तिलोय पन्नति 102 116 ये अवसान सन्न वगैरह जो बता रहे हैं ना, वो बात वहां से ली है उन्होंने। किलो पन्नति 1/109 13 102 से 116 लिखे यहाँ पर। ठीक है, जो कुछ होगी हमें उससे मतलब नहीं। विशेष ज्ञातव्य, पहले में पहले परमाणु किसको कहते हैं उसकी बात बता रहे हैं। परमाणु से शुरू ये सारे यूनिट बता रहे, कितने परमाणु का वो स्कंद वो क्या, उसके सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ आने वाली है। जो द्रव्य आदि मध्य एवं अंत से रहित हो, यानी इसका क्या आदि ये शुरुआत है, ये उसका मध्य ये अंत है, तो उसकी कोई तो डायमेंशन होगी लंबी चौड़ी, तो कहते ऐसा नहीं है, तो कहते उसका आदि मध्य अंत से रहित है, ऐसा उसको कथन में आता है। जो द्रव्य आदि मध्य एवं अंत से रहित हो, एक प्रदेशी हो, इंद्रियों द्वारा अग्राह्य, क्योंकि एक परमाणु इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, अग्राह्य यानी जानने में नहीं आता, एवं विभाग रहित हो, यानी उसका दूसरा विभाग नहीं कर सकते, उसे परमाणु कहते हैं। इस प्रकार के अनंतानंत परमाणु द्रव्यों से एक अवसन्नासन्न स्कंध उत्पन्न होता है। क्या कहा? अनंतानंत परमाणुओं का एक स्कंध बनता है, उसको कहेंगे यहाँ अवसन्नासन्न। यहाँ से अपने यूनिट्स आगे चालू हो जाते हैं। अब ये जो नीचे लिखे ना, आठ अवसन्नासन्नों का एक सन्नासन्न नाम का स्कंध होता है। आठ सन्नासन्नों का एक त्रुटि रेणु नाम का स्कंध होता है। आठ त्रुटि रेणुओं का एक त्रस रेणु नाम का स्कंध होता है। आठ त्रस रेणुओं का एक रथ रेणु नाम का स्कंध होता है। ये आठ आठ गुना बड़े है ना? आठ रथ रेणुओं का एक उत्तम भोगभूमि का बालाग्र नामक स्कंध होता है। आपको यह याद होगा, उत्तम भोगभूमि के जो नए जो जन्मे हुए 7 दिन के अंदर घेटे, उनका जो बाल रोम होता है, उसका एकदम टेपरिंग भाग, जो अंतिम भाग उसका, जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके, उसको बालाग्र कहेंगे। उत्तम भोगभूमि का बालाग्र नामक स्कंध होता है। आठ उत्तम भोगभूमि के बालाग्रों का एक मध्यम भोगभूमि का बालाग्र नामक स्कंध होता है। यानी उत्तम भोगभूमि वालों से मध्यम भोगभूमि वालों के बाल आठ गुना मोटे होगी, जाड़े होगी। आठ मध्यम भोगभूमि वालों के बालाग्रों का एक जघन्य भोगभूमि भोगभूमि का बालाग्र नामक स्कंध होता है। आठ जघन्य भोगभूमि के बालाग्रों का एक कर्म भूमि का, कर्म के बाद भोग के नीचे वो इन ये नहीं चाहिए, इनटू नहीं चाहिए, कर्म भूमि डायरेक्ट पढ़ना उसको, कर्म भूमि के बालाग्र का नाम का स्कंध होता है। देखो उत्तम भोग भूमि को एक बार आठ गुना करो, दो बार आठ गुना करो, तीन बार आठ गुना करो, तो जाए कि कर्म भूमि का आ जाएगा। आठ का घन यानी 512 गुना हो जाता है, और वो भी वो समझ लेना कि वो तो न्यूबॉर्न का वगैरह वगैरह। आठ कर्म भूमि के, एक कर्म के आगे वो डिक्टो किया है भोग के नीचे, वो नहीं चाहिए। तो आठ कर्म भूमि के बालाग्रों का एक लीक नामक स्कंध होता है। ये लीक क लिखा है, लीक होता है ना कि लीक होता है, लीक लीक होना चाहिए, लीक। अभी किसमें निकाला था आपने? गणित, क ख ग, गणित।
हाँ
गणित,
बोला
हाँ हाँ वही वही लिख और जू, क्योंकि आगे जू का प्रमाण बताया ना आपने, अभी निकाल के दिखाया था ना। हाँ दे दो, ये मिल गया, त्रुट रेणु है। मैंने मुझे लगा त्रुटि रेणु लिखा, पर जीवकांड में हमने त्रुट रेणु देखा था। रहने दो, जहाँ ये जो है वो तो ठीक है। एक लीख लिखा है, लिक्षा, लिक्षा यानी लीख, लीख। त्रुट रेणु ऐसा वो सिद्धांत कोश में भी है और जीवकांड में भी, त्रुटि रेणु है ना, त्रुट रेणु था अपने पुस्तकों में, यानी दोनों ही नाम आते हैं ऐसा है। और ये लीक जो लिखा है ना वो लीख चाहिए।
ये संगम के नाम है ना, वो मत निकालना।
हाँ आठ लीक, आठ लीखों का एक जू नामक स्कंद होता है, उसका नाम देते जू। आठ जू का एक जौ नामक स्कंद होता है, जिसको यव भी कहते हैं, जौ भी कहते हैं। जौ कहो यव कहो एक ही बात है। अलसी अलग बात है, अलसी अलग बात है, यव अलग आता है। वो जव होता है गेहूं जैसे थोड़ा लंबा, यव जव, जव वो अलग बात है, वो जवस भी नहीं है, ना ही आलसी है। वो अलग, वो जवस अलग बात है, जवस बात अलग है और ये यव बात अलग है। ये गेहूं जैसा थोड़ा लंबा आता है, यवाकार जिसको कहते, बीच में मोटा दोनों बाजू। हाँ बार्ली को भी नहीं कहते, ये खपली गहू हस है ना वैसा, वो जव नाम का वो जयपुर के उधर। एक यू, एक जू का आकार मालूम है ना, अभी उसको आठ गुना करो, इतना तो बड़ा होगा यव का आकार। जव यव, इसको भी यव कहते हैं, जव भी कहते हैं, यव भी कहते हैं, यव। हम हमेशा जो यवाकार यवाकार कहते हैं ना, वो यह यव। और आठ यवों का एक अंगुल नामक स्कंद होता है, जहाँ ये अंगुल अंगुल बात आती है, ये बात है। हाँ नहीं नहीं नहीं, जव नाम का एक अलग ही ध्यान आता है, क्योंकि ये राजस्थान में यव की रोटी बहुत प्रसिद्ध है, जव की रोटी के। वो अलग है, वो अलग है, वो सातु है। शिखर जी में खाते वो सत्तू, वो धान अलग है। नहीं ये गहू जैसा ही होता है, दिखने में वैसा ही दिखता है। अब अंगुल के भेद एवं लक्षण, अभी तक हम अंगुल तक आ गए, कितने देखे? आठ आठ, बारह हो गए, बारह है ना। तो ये जो बारह संख्या है वो तो आठ आठ गुने हैं। पहले में पहले अवसन्नासन्न, फिर सन्नासन्न, त्रुट रेणु, त्रस रेणु, रथ रेणु, फिर तीन भोग भूमि के लेना, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, फिर कर्म भूमि का लेना, फिर लिख लेना, फिर जू लेना, यव ले, और उसके बाद उसके आठ गुना करेंगे तो यव आता है। आठ यव तो हो जाएंगे, इसके आठ भाग करो ना। हाँ होता है ना, गऊ जितना होता है ना,
ठीक है गऊ जितना होता है तो आठ गऊ से इतना बड़ा,
ऐसे रखो ना गऊ को, ऐसा करो।
हाँ एक लाइन में ऐसे गऊ को रखो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ। हाँ वर्टिकल ही रखना है, उसकी लेंथ देखनी हमको।
वर्टिकल यानी खड़ा ना, खड़े गऊ ऐसे आठ रखने।
हाँ ऐसे
खड़े ने ऐसे
हम ऐसा आड़ा रखे।
अरे दो दो मिली दो 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 मिलीमीटर का रखो ना लंबाई लंबाई अंगुल के भेद एवं लक्षण। अब हम अंगुल तक पहुंचे हैं। हाँ ये तो ऑर्डिनरी अंगुल जिसको यव से निर्मित अंगुल उसको कहेंगे। वो प्रमाण अंगुल अलग है। हाँ तीन प्रकार के अंगुल होंगे। एक इससे निकला हुआ अंगुल उच्छेद अंगुल कह देना उसको। एक आत्मांगुल आत्मांगुल का अर्थ अभी भोग भूमि के इतने लंबे चौड़े जीव हो गए तो उनका अपना अंगुल का प्रमाण बड़ा होगा। भरत चक्रवर्ती का अंगुल का प्रमाण उसको प्रमाण अंगुल कहेंगे। हमारा आपका जो छोटे बच्चे का अंगुल ये इतना होगा क्योंकि ये जो काल का परिवर्तन होता है तो उसमें जो हाइट है उसके अनुसार उस जीव का अंगुल भी अलग अलग होगा। आत्मांगुल है हमारा है आत्मांगुल। इस पद्धति से आठ जवों का जो निकलेगा वो उच्छेद अंगुल और जो अवसर्पिणी के प्रथम चक्रवर्ती का जो होता है वो प्रमाण अंगुल। ये उच्छेद अंगुल से वो वाला जो है वो 500 गुना होगा। हाँ ना वो उसको आत्मांगुल कहेंगे। अपने अपने अंगुल उसका प्रमाण अलग अलग। भरत चक्रवर्ती का हमारे लिए और उच्छेद अंगुल ये वाला आठ जव का जो आता है वो उच्छेद अंगुल। अब यहाँ बताएंगे शायद। हाँ देखो अंगुल के भेद एवं लक्षण। अंगुल तीन प्रकार के हैं उच्छेद अंगुल प्रमाणांगुल और आत्मांगुल। उच्छेद अंगुल ऊपर जो आठ जव का एक अंगुल बताया है वही उच्छेद अंगुल व्यवहारांगुल या सूच्यंगुल कहलाता है। इसी को सूच्यंगुल कहते हैं। सूची अंगुल यानी वो तो लंबाई ली है ना हमने उसकी। इस उच्छेद अंगुल से देव मनुष्य तीर्यंच एवं नारकियों के शरीर की ऊंचाई का प्रमाण और चार प्रकार के देवों के निवास स्थान व नगरादि का प्रमाण जाना जाता है। ये व्यवहार अंगुलों में उसको कहेंगे।
देवों के निवास स्थान को भी अंगुल से
हाँ इन्हीं अंगुलों से नापा जाता है। इस अंगुल से बने हुए योजन में के लिए यानी वो व्यवहार योजन होगा। इतनी बात। ये जो द्वीप और समुद्र जो अकृत्रिम जो रचनाएं होती है ना उसमें वो प्रमाण योजन वगैरह उसकी रचना आती है। यानी ये तो देव मनुष्य नारकियों की जो ऊंचाई है हम कहते ना 500 धनुष है। 500 धनुष जो कहेंगे वो कौन से योजन कौन से अंगुल से वो जो धनुष बनेगी। इतने अंगुल से एक हाथ बनता है एक हाथ के इतने कोस बनते उसे ये उससे मापा हुआ जिसको हम कहेंगे व्यवहार योजन कहेंगे व्यवहार धनुष कहेंगे। और वो प्रमाण वाली बात अलग है। प्रमाण अंगुल 500 उच्छेद अंगुलों का एक प्रमाण अंगुल होता है। यह प्रमाण अंगुल अवसर्पणी काल के प्रथम भरत चक्रवर्ती का एक अंगुल है। ये उसका अपना आत्मांगुल है ना।
भरत चक्रवर्ती का आत्मांगुल प्रमाण
हाँ भरत चक्रवर्ती हमारे लिए स्टेटमेंट अगर डेफिनेशन बनाना है तो अवसर्पणी का प्रथम चक्रवर्ती हमारे लिए ने हम अभी वर्तमान में जो हुंडा सर्पणी है वहाँ भरत चक्रवर्ती हमारे पहले हुए हैं। अब वो लास्ट वाली जो अवसर्पिणी थी वहाँ कोई दूसरा चक्रवर्ती हुआ होगा ना इसलिए कहते हमारे लिए भरत चक्रवर्ती। उसमें अंतिम जो कुछ होगा क्योंकि उस अंतिम लेना ना या इसलिए अवसर्पिणी लिखा है। अवसर्पिणी लिख दिया ना अवसर्पिणी का प्रथम। अब देखो इसमें प्रमाण अंगुल में क्या क्या नापा जाता है। द्वीप समुद्र, अभी हम जो 1 लाख योजन बता रहे थे जम्बूद्वीप समान, वो प्रमाण योजन की बात है। तो द्वीप समुद्र कुलाचल, कुलाचल अभी वो आने वाली बात, जम्बूद्वीप हाँ अचल है पर्वत, 6 आड़े पर्वतों के द्वारा जम्बूद्वीप के क्षेत्र अलग अलग होते हैं, उसको कुलाचल कहते हैं। वेदी, वेदी यानी उसके जो कुछ तट जैसे जो एरियाज होती है वेदी, ये बहुत बड़ी बड़ी होती है वो, भद्रशाल वन वेदी वगैरह जो है, हाँ अलग अलग क्षेत्रों को डिवाइड करने वाली जो कुछ दीवार जैसी रचनाएं होती है उसको वेदी कहते हैं। नदी, कुंड या सरोवर, जगती, ये जगती यानी जम्बू द्वीप है और उसको सराउंडिंग लवण समुद्र है, तो पूरे द्वीप में सराउंडिंग वॉल जैसी स्ट्रक्चर है समुद्र और द्वीप को डिवाइड करने वाली, उसको जगती कहते हैं। और भरतादिक क्षेत्रों का माप अर्थात प्रमाण, इस प्रमाण अंगुल से ही होता है, प्रमाण अंगुल से बने हुए जो प्रमाण योजन है उसमें, या आप कहीं ये अंगुल में कहाँ होते, योजनों में होते, पर हम ये तो उसका ओरिजिन अंगुल से चालू हो जाता है, इतने अंगुलों का एक धनुष वगैरह, वो ये कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाएंगे, तो उससे जो योजन बनेगा उसको प्रमाण योजन कहेंगे। कौन कौन लिए इसमें, द्वीप समुद्र पर्वत वेदी नदी कुंड सरोवर जगती भरतादि क्षेत्र, यानी ये जो कुछ भौगोलिक रचनाएं हैं ना द्वीप समुद्र आदि, वो प्रमाण योजन या प्रमाण अंगुल जो उसमें हो गए। और मनुष्य देव नार के उनके शरीर की ऊंचाई, उनके कितने नगर वगैरह बताए हैं थे, उनके घरों के मंदिरों के, वो तो अंगुल ऑर्डिनरी अंगुल उच्छेद अंगुल से बने हुए। हाँ 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 उसकी, परंतु उसमें लेंथ लेखनी उसकी, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा होगा। हाँ ज्यादा बड़ा होगा ना, जैसे हम 8 यवों का एक अंगुल कहते हैं, उससे 500 गुना लेना है। अब हमारा जो है वो हमारा आत्मांगुल है, अभी और आगे चले जाओ 5वें काल के अंत तक तो और ये छोटे छोटे हो गए, जैसे हमारे बच्चों के जो हाथ है वैसा उनका अंगुल होगा, क्योंकि वो 500 देखो उनकी हाइट कितनी थी, 500 धनुष थी, तो हमारे कंपेयर में हमारे एक धनुष है उनकी 500 धनुष है, ऐसा हम अगर लेते हैं तो 500 गुना बड़ा हो जाएगा। हाँ ऐसा ही इतना एक पैर जिसको हम कहते हैं तर्जनी वाला, तर्जनी इंडेक्स फिंगर, यही बात ये अपने जीवकांड में भी लिखी है पर्याप्ति प्ररूपणा में पूरा है। हाँ ये सेम है, वहां पर कुछ अलग सी नहीं बात, यही बात है। आत्मांगुल, जिस जिस काल में भरत ऐरावत क्षेत्रों में जो जो मनुष्य हुआ करते हैं उस काल में उन्हीं मनुष्यों के अंगुल का नाम आत्मांगुल है। जिस जिस काल, इसलिए कहा कि काल का परिवर्तन होता है, तो यहाँ जो शरीर की ऊंचाई है लंबाई जिसको कहते हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो उस काल में वो आत्मांगुल कहलाएगा, वहां के मनुष्यों के जो अंगुल का नाम आत्मांगुल है। अब इसमें क्या नापेंगे, तो झारी कलश दर्पण वेणु, वेणु यानी पंखा ना, क्या वेणु का नहीं, वेणु वेणु धरे, हाँ बांसुरी क्या, हाँ वेणु यानी बांसुरी, भेरी
बांबू भी होता,
हाँ मगर वो बांसुरी के अर्थ में होगा, वेणुधारी कहते ना, भेरी भेरी वो वाद्य होता है ना, युग शैया शकट, शकट यानी वो तो बैलगाड़ी वगैरह होते उसको शकट कहते हैं, हल मूसल
नांगर,
नांगर मूसल शक्ति मूसल ये आपने वो खांडते हैं ना, वो बड़े बड़े लकड़े के होते हैं, मसाले काटते हैं वो शक्ति तोमर सिंहासन बाण नाली अक्ष चामर, यानी जो मनुष्यों के संदर्भ में जो जो उनके यूटिलाइजेशन में चीजें होगी तो उनके शरीर प्रमाण की होगी, ये लेना है। चामर दुंदुभी पीठ, पीठ यानी पाद पीठ जिसको कहते हैं, पीठ यानी वो तो आटा नहीं, सिंहासन बैठने के जो पीठ कहलाते हैं। छत्र मनुष्यों के निवास स्थान व नगर और उद्यान आदि कों का माप आत्मांगुलन से होता है, यानी मनुष्य के शरीर की ऊंचाई तो हम उनके आत्मांगुलों में नापेंगे कितने अंगुल वाला शरीर है, और वे जो चीजें यूज करते हैं वो उन्हीं के माप से होगी। ये कोई वाद्य है ना भेरी नाम का, हाँ युग युग भेरी बजाना कहते ना,
शिवाजी के लिए
भेरी बजाते हैं, आपने सुना होगा शायद ऐतिहासिक उसमें। अभी युग भी ऐसे कोई उनकी जो चीजें है उसकी शक्ति में कोई उनके आयुध वगैरह हो गए शक्ति। हाँ तोमर का अर्थ हाँ किसके जैसा, गधे जैसे तोमर, अच्छा गदा, अच्छा गदा, यानी कोई उनके आयुध हो गए, यानी उनके आयुध हो गए शक्ति तोमर वगैरह कुछ उनके आयुधों का नाम होना चाहिए। गाथा से संबंधित विशेषार्थ, देखो उच्छेद अंगुल के द्वारा ही व्यवहार योजन का माप उत्पन्न होता है, यानी अंगुल से योजन तक के अभी सारे बीच वाले यूनिट्स बताएंगे। उच्छेद अंगुल से प्रमाणांगुल 500 गुना होता है, अतः प्रमाणांगुल में 500 का गुणा करने से उच्छेद अंगुलों का प्रमाण आता है। ये समझ में आई ना बात, यानी प्रमाणांगुल बड़ा है, एक प्रमाणांगुल में 500 उच्छेद अंगुल पाए जाते हैं। प्रथम अनवस्था कुंड का घनफल 3 × 1/4 × 1000 घन योजन प्रमाण है, इसको 500 के घन का गुणा करने से, क्योंकि 500 से एक बार गुणा करने से नहीं चलेगा, क्योंकि 3 लाख अलग बात है, 1/4 लाख अलग बात है, 1000 योजना अलग बात है, तो हर बार जो क्योंकि हमने ल घन है ना, तो इसके भी 500 के घन से गुणा करने पर घनफल वही सब लखा रखा है 3 × 1/4 × 1000 रखे, फिर 500 से 3 बार गुणा किया, इतने घन व्यवहार योजन प्राप्त होते हैं। हमने पहले हमने 3/40 ल घन लिखा था, उसी को 500 के घन से गुणा करना है। इन व्यवहार योजनों के अंगुल यव और सरसों बनाने पर निम्नलिखित प्रमाण प्राप्त होता है। हमने ऑर्डिनरी योजन तो बना लिए, अब योजनों के कोष बनाएंगे। एक योजन में 4 कोष, यानी 4 कोष का एक योजन होता है, तो हमें जो मिला अभी तो उसको हम अभी देखो ये सारे घन है, तो 4 के घन से उसको गुणा करना पड़ेगा। तो देखो एक योजन के 4 कोष, ये व्यवहार योजन, 1 कोष के 2000 धनुष, यानी 2000 धनुष का 1 कोष होता है, 1 धनुष के 4 हाथ और 1 हाथ के 24 अंगुल होते हैं। इन सब का परस्पर में गुणा करने पर डायरेक्ट उन्होंने हाथ के अंगुल बताए हैं, वैसे हम अंगुल के वीथी बनाते हैं और दो वीथी के 1 हाथ बनाते थे, है ना। 1 योजन के 7,68,000 अंगुल होते हैं, ये उन्होंने सब पूरा उसका गणित बताया है, इसलिए 3 × 1/4 × 1000 × 500 घन इस इतने व्यवहार घन योजनों में 768,000 घन का गुणा करने से, अभी जो हमने देखा ना 3 × 1/4 3 ल रह गया, 3 डायरेक्ट लिखा उन्होंने, 3 ल चाहिए, 3 ल है कि हमारे में ल गायब है, 3 × 1/4 × 1000 × 500 का घन इंटू 768,000 घन प्रमाण व्यवहार घनांगुल प्राप्त होते हैं। ये घनांगुल निकाले यहाँ तक, घन राशि का गुणकार व भागार घनरूप ही होता है। इस सिद्धांतानुसार यहाँ पर सर्व गुणकार घनरूप ही लिए है। यहाँ तक बात ख्याल में आई? उन्होंने डायरेक्ट जंप किया इसलिए आपको ये कंफ्यूजन लगता होगा। जरा मुझे जीव कांड देंगे, अभी रोज लेके बैठना पड़ेगा। ये लेफ्ट साइड में रेड कलर की बुक है,
प्लास्टिक का।
हाँ हाँ, वही
उसका निकाल के दे।
कोई भी दे दो, चले कोई भी चले,
लगता
है सरल ही है। हाँ, वैसे बहुत कुछ कठिन नहीं है। हाँ देखो, ये उच्छेद अंगुल कैसे आता है हमने देख लिया है ना, ये सब वही, उसमें भी वही कथन है सारा ही। उसमें भी परमाणुओं का स्वरूप और विस्तार से बताया, उसमें भी हम वापस नहीं जाएंगे, आप पढ़ लेना, वो 240 पृष्ठ पर है। अब यहाँ कहते हैं कि देखो, ये जो आपको अभी था ना झारी कलश आरसा, झारी कलश दर्पण, उसके बाद धनुष लिखा है, धनुष और ढोल, यानी वेणु और भेरु, यानी धनुष और ढोल हुआ, और युग यानी जोड़ा, जुड़ा यानी चोटी वगैरह होती है। हाँ, वेणु यानी धनुष और भेरी यानी ढोल,
वेणु यानी धनुष,
हाँ धनुष ढोल, जुड़ा इन्हें बाल बना, बाल का जुड़ा बनाते हैं ना वो, फिर शैया है, शकट है ने गाड़ा, हमने बताया था बैलगाड़ी, गाड़ा बैलगाड़ी कहते ना, बैलगाड़ा कहते, वेणु का वहाँ धनुष लिखा है उन्होंने, ढोल, युगे ने जुड़ा, जुड़ा बालों के जुड़ा बनाते ना, चोटी चोटी चोटी, शैया शकट है ने गाड़ा, हल मूसल, शक्ति को शक्ति लिखा है, और तोमर को शौले लिखा है, उसका अर्थ भी नहीं, शौले पता नहीं, तोमर शौले। अच्छा, सिंहासन वह है, बाण चमर, वाण ही लिखा है, वो बाण ही है, वाण लिखते हैं वो हिंदी में, बका वो बहुत बार करते हैं, नाली अक्षर, इसमें क्या लिखा है, चमर दुंदु भी पीठ लिखा है, चमर दुंदु पीठ आगे है, नाली और अक्ष का अर्थ यहाँ किया ही नहीं है, नहीं नहीं अक्षय नहीं, वो तो
एक्सेल होता है,
एक्सेल वगैरह जो गाड़े के होते हो, देखो अभी आप ये यूनिट्स लिख के रखना है, छह अंगुलों का एक पाद। अब कहीं पर लिखो, लगी लो नीचे की जगह है ना, छह अंगुल इज इक्वल टू एक पाद, ऐसा लिखो अभी, छह अंगुल इज इक्वल टू वन पाद। पाद दो पाद इज इक्वल टू एक विलस्ती, विलस्ती वीथ, वीथ हम वीथ कहते हैं उसको, वीथ। देखो दो दो पाद की एक विलस्ती, दो विलस्ती का एक हाथ, अभी है ना क्या लिखा था देखो, अभी एक हाथ में कितने अंगुल आए तेजल बता,
एक हाथ में कितने अंगुल आए?
देखो एक हाथ में दो विलस्ती आई, एक विलस्ती में दो पाद आए यानी चार पाद आ गए ना, और एक एक पाद में छह अंगुल आए, साई चौक 24, उन्होंने यही डायरेक्ट बताया था 24 अंगुल का एक हाथ होता है ना। हाँ अब आगे
किधर देखा, 24 अंगुल होते हैं,
अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, दो हाथ का एक बीक, इसको बीक कहते हैं, दो हाथ का, देखो हम ऐसे ना ये दो हाथ, ऐसा दो हाथ कहते हैं, ये हाथ और एक हाथ, इतना
दो हाथ
इज इक्वल टू एक बीख, बीख इसको बीख कहते हो गए हम, वार कहते हैं। हाँ एक बीख, बीख हम बी लिखते हैं ना, फलों की बी, ख लिखना आगे, बीख, दो बीख का एक धनुष, धनुष लिखना, धनुष नहीं धनुष, दो हजार धनुष इज इक्वल टू एक कोस,
एक कोस
कोस और चार कोस इज इक्वल टू एक योजन, अभी एक योजन में देखना है तो एक योजन के चार कोस हो गए, एक एक कोस के 2000 धनुष हो गए है ना, फिर एक एक धनुष के दो दो बीक हो गए, इस तरह से ये सब उसका प्रमाण बताएंगे। तो उन्होंने डायरेक्ट आपको उसका प्रमाण बता दिया है, अभी उन्होंने जो लिखा है ना उसको आप पढ़ेंगे तो उसकी बात ख्याल में आ जाएगी। देखो हमने गाथा से संबंधित विशेषार्थ में देखा था कि प्रमाण योजन के हमने 500 घन, 500 के घन से गुणा किया था, मैं आपको नंबर बताऊंगी, देखो मैं बताऊंगी, एक दो तीन चार पाँच छठी रही ना, जैसे मिला गाथा से संबंधित की छठी लाइन, एक योजन के चार कोस, अभी आपने जो लिखा उसके साथ टैली करो, एक योजन के चार कोस, एक कोस के 2000 धनुष, यहाँ भी मिल गया ना, एक धनुष के चार हाथ, क्योंकि एक धनुष के हमने दो बीक किए और एक एक बीक के दो हाथ बताए थे, डायरेक्ट हम धनुष से हाथ पर जाते हैं, चार हाथ का एक धनुष होता है, हमने कहता ना तो महावीर की हाइट कितनी थी, तो सात हाथ प्रमाण थे, ये था एक धनुष के चार हाथ, देखे एक हाथ के 24 अंगुल, अब बीच वाले वो पाद बिलस्ती भूल जाओ, डायरेक्ट हाथ के अंगुल बनाए तो 24 अंगुल होते, एक हाथ में 24 अंगुल। अब इसको परस्पर गुणा करेंगे तो हमने योजन में हमको अंगुलों का प्रमाण मिलेगा। देखो इन सब का परस्पर गुणा करने पर, इसमें हमने किस किस का गुणा किया, चार मल्टीप्लाइड बाय 2000 इंटू चार हाथ एक एक धनुष के और इंटू 24, इन सब का परस्पर गुणा करने पर 768,000 अंगुल होते हैं, यानी एक योजन में 768,000 अंगुल, यहाँ तक बात है, ये तो हमने बीच वाली यूनिट सब बता दिया आपको। बीच वाली यूनिटों का इतना काम नहीं आता है विलस्ती वगैरह की, हमेशा अंगुल में बात होती, कहीं हाथ में होती, कहीं धनुष में होती, कहीं कोसों में होती या योजना में होती। अब हमने हमारे पास प्रमाण योजन में वो 3L × 1/4L वगैरह की बात की, उसके ऑर्डिनरी योजन करने के लिए 500 के घन से हमने गुणा किया, उसके हमको योजन मिले। अब डायरेक्ट उसके अंगुल करना है, 7,68,000 के घन से उसको गुणा करेंगे तो हमको वो अंगुल का प्रमाण मिलेगा, वो घनांगुल कहेंगे उसको। तो हमें इतने घनांगुल मिल गए। अभी ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। एक अंगुल के 8 यव, ये तो हमको मालूम है, 8 यव का एक उच्छेद अंगुल की बात है, और एक यव के 8 चौकोर सरसों होते हैं। यव के क्या थे, हम उन्होंने देखा था, हमने उसको जू कहा था, जू के यव होते थे ना, देखो हाँ। तो उसके बदले यहाँ सरसों की हाइट भी उतनी ली, चौकोर सरसों ले लिया उन्होंने। देखो एक अंगुल के 8 यव और एक यव के 8 चौकोर सरसों होते हैं, अतः उपयुक्त व्यवहार घनांगुल के प्रमाण में 8 का घन और 8 का घन से गुणा कर देने से, क्योंकि उसके यव अंगुल के इतने हमको यह अंगुल मिले, उसको 8 के घन से गुणा करेंगे तो उतने हमको घन यव मिलेंगे, और उस यवों के और सरसों बनाने हैं 8 के घन से गुणा करेंगे तो इतने हमके सरसों मिलेंगे। तो कहते चौकोर इसलिए कि घनाकार लेना है, इसलिए 8 के घन से गुणा करेंगे तो चौकोर सरसों ने पूरा वो क्यूबिकल सरसों हमको मिल जाएगा। तो उसका प्रमाण देखो, 3L × 1/4L × 1000, ये तो हमारे प्रमाण योजन थे। 500 के घन से गुणा करने पर ऑर्डिनरी योजन हुए, 7,68,000 के घन से हमको घनांगुल मिले, उसको 8 के घन से गुणा किए तो हमके घन यव मिले, उसको 8 के घन से करने पर वो सरसों मिले। ये अनवस्था कुंड के चौकोर सरसों का प्रमाण प्राप्त होता है। इन समस्त सरसों के प्रमाण में 9/16 का भाग देने से गोल सरसों हो जाते हैं, क्योंकि चौकोर जो है क्यूबिक, उससे गोलाकार का एरिया कम हो जाता है, कारण कि चौकोर वस्तु के घनफल में 9/16 का भाग देने से गोल वस्तु का प्रमाण प्राप्त होता है, यानी 9 से गुणा करना, 16 से भाग देना। भागहार का हार गुणकार हो जाता है, क्या कहना चाहते हैं, भागहार यानी भाजक, हार यानी उसका, देखो किसको कहना, हार यानी वो भाजक संख्या ना, उसको हार कहते हैं, और ऊपर की संख्या उसको अंश कहते हैं, हम जिसको छेद कहते हैं, अंश और छेद, ये मालूम है आपको टर्मिनोलॉजी। हाँ देखिए, हमारे पास 100 संख्या है मल्टीप्लाइड बाय, नहीं उसको भाग देना है ना, डिवाइडेड बाय 2/5, 2/5 से भाग देना है, ये भागहार है, ये पूरा मिलकर भागहार है। भागहार का अर्थ होता है भाजक संख्या, कौन सी संख्या से भाग देना है, 2/5, जिसको हम 2/5 कह रहे हैं। तो 2/5 इस संख्या में, 2 ये उसका अंश है और 5 उसका हार है, यानी इसी को हम छेद कहते हैं। तो इसमें रूल क्या है, भागहार का भागहार, यानी भागहार यानी भाजक संख्या की जो अपूर्णांक संख्या है उसका जो छेद है वो अंश हो जाता है। तो हम ऐसा कहेंगे उल्टा करके गुणा करो, तो हम उसको 5/5 से गुणा करते हैं। तो यही कहते हैं भागहार का हार, यानी भागहार का भागहार, भाजक में जो संख्या है अपूर्णांक की छेद में, वो अंश में चली जाती है गुणा करने, यही लिखा है यहाँ पर। भागहार का हार गुणकार हो जाता है, गुणकार यानी गुणक,
अंश का गुणाकार हो जाता
ठीक है, अंश का लिखो चलेगा, अंश का गुणकार हो जाता है। फिर भी जिस संख्या को हम दे रहे हैं उसका गुणाकार हो जाता है, डायरेक्ट उसको गुणाकार कहने से।
हाँ,
परंतु भागहार में जो अंश है वो तो नीचे आता है, वो भागहार हो जाता है एक्चुअली। यानी 9 16 से भाग देंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 9 से गुणा करना पड़ेगा, 16 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, वो डायरेक्ट गुणकार हो जाता है, वो ज्यादा ठीक है। अंश का यानी मूल संख्या का गुणकार हो जाता है। का भागहार, भागहार का छेद 5 जो है वो अंश का गुणकार होता है। यहाँ अंश 2 को लेना है क्या मूल संख्या को लेना है? 2 का गुणकार नहीं होगा, वो ओरिजिनल संख्या का, अपन ओरिजिनल संख्या का वो गुणकार होगा, भाज्य राशि का गुणकार हो जाएगा। यहाँ अंश का लिखने से अभी 2 पंचमांश है हमारा, उसमें 2 अंश है और 5 छेद है, ये 2 का गुणकार नहीं होता है। 5 किसका गुणकार होगा, कौन से अंश का? 100 का। हाँ, तो परंतु हम ये भी हमारे जो पूरा भागहार है उसमें भी अंश और छेद 2 संख्या है ना, अंश लिखने से कंफ्यूजन होगा उसमें। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, यानी वो स्पेसिफिक भाज्य राशि का गुणकार होता है ऐसा कहेंगे तो अच्छा है ना। जिसको भाग दे रहे वो हमारी भाज्य राशि है, तो भागहार का हार भाज्य राशि का गुणकार होता है वो ठीक है। इस नियम के अनुसार गुणकार यानी वो गुणक होता है, ये प्रोसेस का नाम गुणाकार भागाकार वो नहीं यहां लेना। इस नियम के अनुसार यहां 16 भी गुणकार हो जावेंगे और 9 वो छेद में आ जाएंगे। पहले एक चतुर्थांश वाला 4 नीचे था छेद में, अब ये 9 भी छेद में आ गया। तो देखो 300,000 लिखे उन्होंने, अभी फिगर्स ल के बदले लाख में लिख दिए, फिर 1,00,000 एक चतुर्थांश वाला वो चतुर्थांश नीचे लिखा है देखो, फिर 1,000 योजन के 1,000 लिखे, 500 को 3 बार हमने लिखा था ऑर्डिनरी योजन किए, 7,68,000 को 3 बार लिखा, अंगुल हुए उसके, फिर 8 को 3 बार लिखा यव हुए, 8 को 3 बार लिखा सरसो हुए, और 9 16 से तो भागाकार करना है तो 16 9 से गुणा किया। अभी इसी को सबको अथवा कहकर इसको उन्होंने अन्य राशि में बता दिया, बादाल को 256 और 18 से गुणा करके 31 रखने पर गोल सरसों का प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे बादाल की संख्या उन्होंने लिख दी इंटू 256 इंटू 18 इंटू वो कितने जीरो बताए उन्होंने, 31 रखे, परस्पर गुणा करने से उन्होंने ये 45 अंक प्रमाण संख्या गोल सरसों की प्राप्त हुई। ये सब उसका आपस में गुणा करने से बादाल 256 और 18 का गुणाकार आया, ये सबको मिलकर उन्होंने करके बताया। क्योंकि यहाँ देखो ना, ये 8 कितनी बार लिखा है,
6
बार लिखा सैत्रिक, 18 बार 2 हुए यहाँ पर और 16 लिखा है, 4 बार 2 और हुए, 22 बार तो 2 आ गए यहाँ पर, 16 बार 2 आते हैं तो 65 हो जाती है और 18 बार 2 आते हैं तो बादल हो जाता है, नहीं 32 बार हो जाएगी ये, उसमें बाकी उसमें से ले लिया उन्होंने पूरा, उन्होंने टोटल आपको बता दिया हूँ। ये सारे जीरो जीरो इकट्ठे निकाले और भी बाकी जो संख्या है ना उसका उन्होंने शॉर्ट करके सब लिख दिया। गणित करते बैठ जाना घर में। हाँ ये तो उन्होंने क्या हुआ है वो गड्ढे का लिखा भी ऊपर भी रसरसो भर रही है ना हमको। हाँ वो कहाँ लिखी है वो नहीं लिखी। हाँ वो आगे आएगी ना क्योंकि अभी वो ऊपर जो एरिया है वो जिसको हम कहते शंकु, शंकु के आकार का यानी कोन जिसको कहेंगे, तो ये तो सिलेंडर है और ऊपर जो भरेंगे वो कोन है। अभी हम यहाँ रुकेंगे।
दो वाक्य पढ़ लो।
यही गोल सरसों प्रथम अनवस्था कुंड में भरी जाती है, इसकी सिद्धि निम्न प्रकार होती है। ये जो कैसे निकालना ये बादल वगैरह वो कल हम देखेंगे, किसको क्या क्या किया उसकी बात यहाँ कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हूँ।